السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے متعلق جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ ہے. دین میں دو ہی حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، ایک بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور نہ صرف حقوق ادا کرنا بلکہ اس سے آگے انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا. شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت، چونکہ شفقت میں صرف حق کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس سے آگے کا کام ہوتا ہے تھوڑا سا. اور تعظیم لامر اللہ، اللہ پاک کے حکم کی، اللہ کی باتوں کی عظمت بجا لانا، دل سے بھی احترام کرنا، ظاہری طور پر بھی ادب احترام کرنا، اور عمل سے اس کے احترام کا اظہار کرنا، یعنی عملی طور پر اس کو بجا لانا کہ اصل احترام اسی میں ہے. تو جو بندوں کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے ہیں، بندوں میں تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں، ہیں وہ بھی بندے لیکن ہیں وہ ہمارے ماں باپ. استاد اور پیر ہمارے ہم سے مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں، ہیں تو وہ بھی بندے ہی لیکن ہم سے حقوق میں زیادہ ہیں، ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں. استاد چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مرتبے میں بڑا رہتا ہے وہ، حتیٰ کہ جو کے جی کے، پرائمری کے، پری اسکول کے، قائدے کے، ناظرے کے جو استاد ہوتے ہیں، آدمی پی ایچ ڈی ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ پری اسکول کا استاد پری اسکول میں ہی رہا، اور اتنا ہی اس نے پڑھا تھا، کچھ زیادہ پڑھا نہیں تھا، ہائی اسکول تک پڑھا کے پڑھا رہا تھا مثلا، مرتبے میں یہ پی ایچ ڈی آگے نہیں نکل سکتا اس سے، استاد کا مرتبہ بڑا ہے. قابلیت میں بڑا ہو جائے گا، قابلیت میں بڑا ہونا الگ چیز ہوتی ہے، مرتبے میں بڑا ہونا الگ چیز ہوتی ہے. جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا قابل ہو جائے گا، اس میں کیا بات ہے. قابلیت کے اعتبار سے مجتہدین بعد میں پیدا ہوئے، ان کی قابلیت بہت آگے تھی، لیکن مرتبے میں کوئی نہیں بڑھ سکتا صحابہ سے. حضرت صحابہ میں سب اجتہاد کرنے والے تو تھے نہیں نا. تو پیر کا مرتبہ اور استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا استاد ہو چاہے بڑا استاد ہو. اور یہ استاد کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے چاہے دین کے لین کا ہو چاہے دنیا کے لین کا، یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے. آج کل اس طرف تو توجہ دلائی نہیں جاتی ہے کہ اسکول کے، ہائی اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے جو استاد ہوتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، یہ آج کل چلتی نہیں بات. یہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایسے ہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ادب کے قابل نہیں ہیں، اور دوسرے بھی ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ وہ ادب کے قابل نہیں ہیں، چونکہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، اخلاقی اقدار نہیں ہوتے، تو لوگوں کے نزدیک یہ نہیں ہوتا. ویسی بات نہیں ہے، دین کا علم والا ہو یا دنیا کا علم والا ہو، استاد استاد، اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا لحاظ ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے. بڑے بھائی ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بڑی بہن ہم سے بڑی ہوتی ہے، उम्र में जो हमसे बड़े उम्मत के अफराद होते हैं वो भी बड़े होते हैं, उनके भी एक बड़े होने का एतबार है। जैसे हदीस में आता है कि कोई आदमी किसी बड़े आदमी को अपनी उम्र से ज्यादा के इसलिए इज्जत दे कि वो उम्र में ज्यादा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्र में इस बंदे के पहुंचने पर जरूर कोई ऐसा आदमी खड़ा करेगा जो इस उम्र में उसको इज्जत देगा। बड़ों का एहतराम और इज्जत देने के लिए ऐसी बातें फरमाई गई कि सिर्फ उम्र की बुनियाद पर भी तुम इज्जत दोगे तो अल्लाह पाक इज्जत देगा, उम्र की बुनियाद पर खिदमत करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी खिदमत करा देगा। हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद, जो खिदमत करता है वो मखदूम जरूर होता है, यानी उसकी खिदमत जरूर की जाती है। इसीलिए बुजुर्गों की अल्लाह वालों की खिदमत को बड़ी सआदत समझा जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको मखदूम बनाते हैं। तो जिस लाइन की उसमें खिदमत की उस लाइन में मखदूम बनाएंगे, उस लाइन में मखदूम बनाने का मतलब यह कि अल्लाह पाक इसको अपना खुसूसी ताल्लुक देंगे। हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद। जिन घरानों में दीनदारों की, अल्लाह वालों की, हुफाज की, उलमा की खिदमत होती है, उलमा ने लिखा है कि उन घरानों में जरूर हुफाज उलमा पैदा होते हैं, सिला होता है। हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। अब ताला शानों का एक निजाम है, ऐसे ही खानदान के अंदर जो दूसरे अफराद हैं, चचा है, खाला है, फुपू है, ये भी बड़े हैं मर्तबे के एतबार से, इनका भी एहतराम होता है। चची नहीं होती, फूफा नहीं होते, खालू नहीं होते, मुमानी नहीं होती, क्योंकि ये बाहर के अफराद होते हैं, खानदान के नहीं होते, लेकिन इनका मर्तबा ताबे बनकर है। मामू के ताबे होकर मुमानी, चचा के ताबे होकर चची, फूफू के ताबे होकर फूफा। यहां पे फूफा के ताबे फूफू नहीं है, फूफू के ताबे फूफा है, क्योंकि फूफा तो गैर आदमी है, आपके खानदान का नहीं होता। ऐसे ही चची जो है वो चचा के ताबे है, और मुमानी मामू के ताबे है, और खालू खाला के ताबे है। यहां पर भी इज्जत देने में, एहतराम में, दूसरे अकदार में, रियायत में, मुरव्वत में, लिहाज में, और इनके हकाम अलग अलग हैं, इसीलिए शरीयत में नाम भी अलग अलग हैं। इसीलिए इससे भी बच्चों को रोकना चाहिए कि हर एक को आंटी और हर एक को अंकल, ये हमारी कदरों में नहीं आती चीज, इस्लामी तहजीब में नहीं है ये बात कि जितनी फीमेल हैं वो आंटी बन गई, जितने मेल हैं वो अंकल बन गए। भाई चचा आपके अलग हैं, मामू अलग चीज हैं, फूफा अलग हैं, खालू अलग हैं। चचा और मामू तो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, चचा तो विरासत में हकदार होता है बहुत सी सूरतों में, मामू भी कभी कभी हकदार होता है, बहुत कम पेश आता है उसके हकदार होने का विरासत में, लेकिन चचा का तो बहुत आसबात में है वो। असबात का मतलब ये होता है कि हिस्सेदार दो किस्म के होते हैं, एक शरीयत की तरफ से मुकर्रर है उसका हिस्सा कि उसको हर हाल में मिलेगा, और हिस्सा मुकर्रर होता है, जिसको हर हाल में मिलता है एक वो है, जिसको हिस्सा मिलता है लेकिन हर हाल में नहीं, बास कंडीशन में मिलता है। ये दो किस्में पहले बनती हैं जिनका हिस्सा मुकर्रर होता है, और खानदान वालों की एक किस्म वो होती है कि जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं होता, हिस्सेदारों को मिलने के बाद जो बच गया ले लेना होता है, उसको असबा कहते हैं। उसमें चचा भी आता है, असबात में चचा भी होता है, भाई भी होता है बाज़ उत्तम। चचा अलग है, खालू अलग है, तो अब आप उसको भी अंकल बोलेंगे, इसको भी अंकल बोलेंगे, तो बहुत से हकूक पर भी असर पड़ता है और दूसरी चीजों पर भी असर पड़ता है। फूफा अलग है, मामू अलग है, ये अम्मी का सगा भाई है, वो अब्बा की बहन का शौहर है। अगर शादी है तो रिश्ते बाकी हैं, ये शादी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो कोई हक भी मुतालिक नहीं होता। इसलिए चची से मुमानी से बासुरतों में एहतियात और पर्दे के अहकाम लागू होते, क्योंकि खुद उससे शादी हो सकती है बाद में, मुहर्रमात में नहीं आते वो लोग, तलाक हो गई, कुछ हो गया, मरमरा गए, रिश्ता इनसे भी हो सकता, भतीजे से भी, मसाइल हैं उसके। ऐसे खवातीन के अंदर भी है, ये जो दराजात हैं इसका एतबार खानदान पर भी है, इसका एतबार हुकूक पर भी है, इसका एतबार तरजीह पर भी है कि आप किसको तरजीह देंगे बात सूरतों में, समोतात पर भी है कि किसकी बात सुनेंगे किसकी नहीं सुनेंगे। तो बंदों के हुकूक में एक किस्म वो है कि जो बंदों में हमसे बड़े हैं, خاندان میں بھی، باہر عام مسلمانوں میں بھی، مرتبے اور رتبے میں بھی، تعلیم و تربیت کی لین میں بھی. اور بندوں میں سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں. ہم سے چھوٹوں میں ہماری اولاد ہے، ہم سے چھوٹوں میں ہماری بیویاں ہیں. بیوی برابر نہیں ہوتی، بیوی چھوٹی ہوتی ہے. اور یہ فیل کرنا کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑاپن نہیں ہوتا. یہ شریعت کا دیا ہوا حق ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. آخرت کے اعتبار سے مرد اور عورت ایک ہیں، ثواب کمانے میں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے میں، جنت بنانے میں، درجات حاصل کرنے میں مرد اور عورت برابر ہیں. دنیا کے اعتبار سے انتظاماً مرد بڑا ہے، عورت چھوٹی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی وجہ سے اسٹرکچر الگ ہے، قوا الگ ہیں، ہمت الگ ہے. جو ذمہ داری کے کام ہیں وہ سارے مردوں کے ذمے ہوتے ہیں، عورتوں کے ذمے وہ لگائے ہی نہیں جاتے، اس لیے کہ بڑا ہے. تو عورت جو ہے نا وہ ہمارے چھوٹوں میں آتی ہے. عورت سے مراد بیوی، ماں چھوٹی میں نہیں آتی، بڑی بہن چھوٹی میں نہیں آتی. خلقت کے اعتبار سے چھوٹی میں آئے گی، لیکن نظم کے اعتبار سے شادی میں چھوٹی میں نہیں آئے گی، وہ برابری میں نہیں آئے گی یا بڑے میں نہیں آئے گی. اور ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے نا، مشرقی تہذیب کا اور مغربی تہذیب کا، یہ اسلامی تہذیب کا اور غیر اسلامی تہذیب کا، جو تہذیب کا ٹکراؤ ہے اس کی بسم اللہ یہی سے ہے کہ ڈومینیشن عورت کو ہوگا یا نہیں ہوگا. چونکہ پھر پوری زندگی افیکٹڈ ہوتی ہے، اس سے پوری زندگی پر اثر پڑے گا، گھر کے رہن سہن پر پڑے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت پر پڑے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ڈیسیشن پر پڑے گا، اخراجات پر پڑے گا، مہمان نوازی پر پڑے گا، سلوک پر پڑے گا، خدمت پر پڑے گا، مال کے خرچ پر پڑے گا، نظم نظام پر پڑے گا. ڈومینیشن کس کا ہوگا؟ مغرب کی تہذیب میں ڈومینیشن عورت کا ہے گھریلو زندگی میں، مشرقی تہذیب میں، یوں کہہ لیجئے اسلامی تہذیب میں ڈومینیشن مرد کا ہے. اور تہذیب کی قدروں کے بچنے سے، تہذیبی روایات کے محفوظ رہنے سے ہی قوم محفوظ ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر اپنی شناخت ختم کر دینا ہے، ضم ہو جانا ہے ان میں، تو آپ یہ قدر شروع، یہاں سے اگر قدر شروع ہو گئی یا ہو گئی ہے کسی کے پاس، تو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے وہاں پہ. تعلیم اسی کی دینی ہے، تربیت اسی کی کرنی ہے کہ بھائی اسلام نے عورت کو چھوٹا رکھا ہے مرد سے. اولاد چھوٹے بندوں میں آتی ہے مرد کے مقابلے میں. جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو جو آفیسر ہوگا وہ بڑا ہے، اور جو اس کے تحت کام کرنے والے ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے. پہلے زمانے میں غلامی کا بھی رواج تھا، اور ابھی قیامت تک بھی رہے گا، یہ تھوڑی ہے کہ نہیں رہے گا، وہ ہے نہیں اس وقت قابو میں مسلمانوں کے، ختم نہیں ہوا، اسلام نے کینسل نہیں کیا ہوا ہے اس کو. تو اس میں مالک جو ہوگا وہ بڑی پوزیشن میں ہے، مملوک اور غلام جو ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے. استاد پڑھاتا ہے تو بچے چھوٹے ہوں گے. تو مخلوق میں گویا بندوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حقوق کا تعلق وہ ہے جو چھوٹوں سے ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں جس کی فکر ہوتی ہے یا ہونا بھی چاہیے، وہ ہماری اولاد ہوتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح ارشادات فرمائے ہیں، اور ذمہ داری ہمیں بتا دی ہے کہ ہماری اصل ذمہ داری، مسئولیت کیا ہے کہ اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس بارے میں. ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلے جو چیز طے کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوسچن کس کا ہوگا، اس کی تیاری پہلے ہو، جس کا کوسچن نہیں ہوگا اس کی تیاری بعد میں ہو. آپ کی ذمہ داری کے اعتبار سے آپ سے پوچھ کس چیز کی ہے، پہلے آپ کو وہ دیکھنا ہوگا. اس سے ہٹ کر آپ کے ذمہ آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ چاہیں تو سلوک کر سکتے ہیں. آپ کے دل کا تقاضا ہوتا ہے سلوک کرنے کا، آپ کی محبت کہتی ہے سلوک کرنے کو، ضرور کریں، لیکن پریپریشن پہلے اس کا ہوگا جس کا جواب دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے. راعی اصل بکریوں کے چرانے والے کو کہتے ہیں، رواۃ الابل، یعنی جس کے ذمہ चराना निगरानी करना तरबियत देना होता है। ऊंटों के चराने को भी कहते हैं, बकरियों के चराने को भी कहते हैं, और असल मुहाफिज के माना होते हैं कुल्लुकुम राई, तुम में से हर कोई राई है, हर कोई मुहाफिज है किसी न किसी का। छोटे भाई भी इसी में आते हैं, छोटी बहनें भी इसी में आती हैं। कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर कोई निगरान है। वह कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, और तुम में से हर कोई पूछा जाएगा अपनी रईयत के बारे में। हमारी जिम्मेदारी में से हमारी रईयत की जवाबदेही भी है, हमारी नमाज की जवाबदेही, हमारे रोजे की, हमारी जकात की, हमारे हज की, तो इनके हुकूक के बारे में, उनके हर हर अमल की जवाबदेही नहीं होती, उनके जो हुकूक हैं उनके बारे में जवाबदेही होती है। और बास सूरतों में उनका अमल हमारी तरफ ही मंसूब होता है, इसमें हम लोग बहुत केयरलेस हैं, तवज्जो नहीं देते बच्चों के मामले में, सारी इस पे जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। मसलन बच्चियों को हमने पैंट पहना दिया, फर्ज करो बच्ची है और पैंट पहनती है, मां और बाप दोनों पे खुदा की लानत है, मलऊन हो जाते हैं। अगर इसने पहनाया है अपनी तरफ से, तो छोटी बच्ची को तो हम ही पहनाते हैं, वो तो बड़ी होने के बाद पहनती है खुद। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि जो मर्दों के लिबास पहनने वाली औरत होगी उस पर लानत है, और जो औरतों का लिबास पहनने वाला मर्द होगा उस पर लानत है। और बच्चे खुद जो काम नहीं कर सकते माँ बाप करेंगे, तो बाप माँ बाप की तरफ मंसूब होगी वो चीज। लिबास के मामले में केयरफुल नहीं, अरे नहीं चलता है, अरे नहीं चलता है, कहां से चलता है? जब सर पे दंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा कि चलता था कि नहीं चलता था। ये नहीं चलने वाली चीज है, ये सजा खाने वाली चीज है। ये हम ना करें, बाद में बच्चों ने माहौल की खराबी की वजह से अपने अमल को खुद बिगाड़ लिया, तब हम जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन हमने उनको बिगाड़ा है, हम तो जिम्मेदार हो जाएंगे। फिर बच्चों का लिबास है, बच्चियों का लिबास है, बालों के पास यूनिफॉर्म की अहमियत नहीं होती। अरे भाई यूनिफॉर्म क्या है, इस्लाम में इजाजत दी हुई है। किसने कहा आपको? कुछ पढ़ा भी है आपने इजाजत हर चीज की दी हुई? कहां लिखा हुआ है हर चीज की इजाजत? हमने तो नहीं पढ़ा इतने 10-12-15-20 साल में। भाई लिमिट्स हैं उसकी, शर्तें लगी हुई हैं। बाज़ाब्ता मर्दों के लिए भी लिबास की शर्तें हैं, औरतों के लिए भी लिबास की शर्तें हैं। क्यों सब दुपट्टा ओढ़ के नहीं आ रहे यहां पे? है ना कुछ? तो जैसे हम दुपट्टा ओढ़ के शर्ट सलवार पहन के फूलों का और जना वाला उसका चमकियों का नहीं आ सकते, ऐसे वो भी नहीं जा सकती। लिबास का मसला है, पार्टियों में आने जाने का मसला है, बर्थडे का मसला है। नहीं बस हम तो वैसे ही बुला लेते हैं, हम मनाते उनाते नहीं, लेकिन हम वैसे ही बुला लेते हैं। हमें पता नहीं चल रहा इस बात का कि हम क्या फीड कर रहे हैं अपने घर में। ये फीडिंग है ये, कि किस चीज को आप परवान चढ़ा रहे हैं अपने घर में। इसलिए मजहबी एतबार से हमसे पूछा जाएगा, ये बस मलहूज रखना, उलमा से ये पूछ लेना कि भाई औलाद के बारे में मुझसे क्या पूछा जाने वाला है, पहले उसको करना। उसके बाद आपकी मोहब्बत भी कुछ चाहती है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा परवान चढ़े, नेक नाम हो, इज्जत कमाए, और खूब अल्लाह पाक उसको दौलत दे, अच्छी जगह उसकी शादी हो, किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं, आराम से जिंदगी गुजारने वाला हो, चार लोगों में उसका मुकाम हो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होगी, चाहे दीनदार हो चाहे बेदीन हो, दुनियादार हो या दीनदार हो, कोई हो। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में, शेख अपने मुरीदीन के बारे में हमेशा यह ख्वाहिश रखता है कि ये मुझसे अच्छी कंडीशन में जाएं। माँ बाप अपनी औलाद के बारे में ये नहीं दोगे कि अरे मैं तो जुलाहे का जुलाहा हूं, मेरा बच्चा पढ़ेगा तो क्या बनेगी मेरी हैसियत? नहीं, मैंने तो कभी डॉक्टरी नहीं की, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो क्या होगा? मैं तो जाहिल का जाहिल हूं, मेरा बच्चा आलिम हो जाएगा तो क्या होगा? ये माँ बाप नहीं सोचते। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि बन जाए, नाम रोशन करे, चमक जाए। यही हाल पीर का अपने मुरीदीन के बारे में होता है। ये नहीं होगा कि अरे ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसकी टांग खींचो, ये दूसरी जगह होता है, आगे बढ़ो। क्योंकि जितना मुरीद आगे बढ़ेगा पीर ही को उड़ाएगा वो। पीरा नमी परन मुरीदा मी परानन, पीर खुद नहीं उड़ता, मुरीदा उड़ाते हैं उस पर ही। हमारे मुर्शद ऐसे, हमारे शेख ऐसे, हमारे मुर्शद ऐसे, वो बेचारा तो जाकर वैसा ही है। इसी तरह औलाद का मसला है, तो चाहत तो हमारी ये होती है अपनी औलाद के बारे में कि वो खूब पले फूले, परवान चढ़े, इज्जत भी हो, दौलत भी हो, सामान भी हो, सहूलतें भी जिंदगी की हो, हर कोई आदमी चाहता है ये। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कयामत के दिन
कि कितनी उसकी इस दुनिया में इज्जत हासिल होने की फिक्र की, कितनी उसकी दौलत हासिल होने की फिक्र की, कितने उसके मकान दुकान बन जाने की फिक्र की, कितनी उसकी डिग्रियों की फिक्र की। आप पढ़वा लें, जरूर इजाजत है इसकी, आपकी शफकत कहती है इजाजत है, अलाउ है, मगर ये मशरूत है, कंडीशन इसके अंदर कंडीशन लगा हुआ है कि इसके दीन को नुकसान पहुंचा तो गर्दन तुम्हारी नपेगी, उसकी तो नपेगी लेकिन तुम्हारी पहले नपेगी। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल वलद युलद अलल फितरा, बच्चे तो फितरत पर पैदा होते हैं, यानी उनमें इस्तेदाद होती है हर चीज को लेने की, अच्छाई को भी और बुराई को भी। और जो और दीन फितरत चूंकि अच्छा दीन है और फितरत के मुआफिक है तो दीन इस्लाम को कबूल करने की इस्तेदाद भी उसमें है। अल वलद युलद अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही, मां बाप उसको यहूदी बनाते हैं, और युनस्सरानिही या मां बाप उसको नसरानी और ईसाई बनाते हैं, और युमज्जिसानिही या मां बाप उसको बुतपरस्त और आतिशपरस्त और बेदीन बनाते हैं, मां बाप बनाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जितने यहूदियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं जब पैदा हुए तो मुसलमान हैं, जितने ईसाइयों के बच्चे पैदा हो रहे हैं जब पैदा हुए तो मुसलमान हैं, जितने दहरियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं जब पैदा हुए तो मुसलमान हैं, जितने मुसलमानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं जब पैदा हुए तो मुसलमान हैं। अब जो उसके बाद का निजाम है वो मां बाप पर है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। तो जैसे टोटली मजहब के बारे में मां बाप पर जिम्मेदारी है, मजहब के सर्कल के अंदर भी बच्चों के बिगड़ने और बनने पर मां बाप पर जिम्मेदारी है कि हमारी तरफ से इंतजाम में क्या एहतमाम किया गया, इंतजाम में एहतमाम पूरा किया गया, फिर उसके बाद उसके खिलाफ में कोई बात सामने आई वो मुकद्दर का जहूर है और उसमें मां बाप जिम्मेदार नहीं होते। और अगर इंतजाम में कोताही हुई उसके बाद बिगाड़ आया वो भी मुकद्दर का जहूर है मगर मां बाप की जिम्मेदारी के साथ। जैसे किसी आदमी को किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, मौत से पहले नहीं मारा उसने उसको, मौत से पहले नहीं मारा उसने, मौत आई तो ही मारा, लेकिन कत्ल की जिम्मेदारी कातिल के सरपुर्द है, दुनियावी एतबार से भी और अखरवी एतबार से भी। यहां पे भी बदलेगा निजाम है और आखिरत में तो यह है कि उमय अख्तुल मोमिन मुतामिदन फजजाहु जहन्नम खालिदीन फीहा, जो आदमी किसी मुसलमान को जानबूझकर मारा उसकी जगह जहन्नम है और हमेशा रहेगा। एक बात बोलता हूं आगे निकल जाऊं, थोड़ा सा गौर करना इस पे, ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ही मुझको ऐसा था, अल्लाह के पास ये जवाब नहीं चलता जी, एक बात है मजहब की है ये बात, ये नहीं बोल सकते आपके ऑर्डर मुझे ऐसा करना जरूरी था, आपका भी अल्लाह ने अकाल दी है मजहब के, आप खुद जिम्मेदार हैं। وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ کی اللہ کا غصہ بھی ہوگا وَلَعَنَهُ اس پر لعنت بھی ہوگی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا مگر مرا وہ اپنے ہی ٹائم پہ ہے مقتول جس کا مرڈر ہوا وہ اپنے ٹائم پہ مرا ہے وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا وہ ذمہ داری اس پر ہے ایسے بچے اگر بگڑ گئے تو مقدر کا ظہور ہوا لیکن ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے बच्चे अगर संवर गए मुकद्दर का जुहूर हुआ सरफराजी हमारे सर पे है। इसीलिए फरमाया कि बच्चा मसलन हाफिज हो जाता है तो उसके मां बाप को ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। क्यों भाई, मां बाप को क्यों, यही थे डिसीशन लेने वाले, उसको क्या मालूम था बच्चे को कहां जाना है, तय तो इन्होंने किया, डिसाइड तो इन्होंने किया, हिम्मत तो इन्होंने की, तरकीब इन्होंने दिलाई। ये फरमाया कि अलवलद युलद अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही, और जो हदीस मैंने पढ़ी थी उसका मजमून यह है कि कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, और तुम में से हर कोई पूछा जाने वाला है अपने जिम्मेदारों के बारे में कि जिन पर उसकी जिम्मेदारी है वह कितनी निभाई। बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतालिक ये सिलसिला मजामीन का मैं थोड़ा सा शुरू कर रहा हूं, एक इब्तदाई बात हुई है, अल्लाह ने चाहा तो फिर यह सिलसिला रहेगा। सुन्नतें पढ़ लीजिए।